ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथाघनामाभ्यपतन् महासुरः तेषां सुखक्रीडन् वीक्षण क्षमः। उधर एक माइक दो। नित्यं जदन्तर्निजजीवितेप्सुभिः पीतामृतैराप्यमरैः प्रतीक्ष्यते। दृष्ट्वार्भकान् कृष्णमुखान् घासुरः कंसानुशिष्टः स बकी बकानुजः। अयं तु मे सोदरनाशकृतयः द्वयोर्ममैनं सबलं हनिष्ये। एते जदा मम सुहृदो स्थिलापः कृतास्तदा नष्ट समा व्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्मसुकानु चिन्ता प्रजा शवः प्राणभृतो हि येते। इति व्यवस्या जगरं बृहद्वपुः स योजनायां महाद्रिपीवरम् धृत्वाद्भुतं व्याप्तगुहाननं तदा पथि व्यसेतग्रसनाशया खलः। धराधरोष्ठ जलदोतरोष्ठ दर्याननान्तो गिरिशृङ्गद्रंष्टः ध्वान्तान्तरास्यो वितता ध्वजिह्वः परुषा नीलश्वासदवे क्षणोष्णः। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियम् व्याता जगर्तुण्डेन युत्पृच्छन्ते स्म लीलया। तो श्री कृष्ण के साथ ब्रज बालकों की सुख क्रीड़ा का वर्णन हुआ कल। अब अघासुर वहां पहुंचा, कंस के द्वारा भेजा हुआ। उन बच्चों को, बछड़ों को और उनके साथी कृष्ण को मारने के लिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ से इस कथा को कह रहे हैं अथ शब्द लगाकर, क्योंकि अब भिन्न उपक्रम में यह कथा है। प्रस्तुत रस का एक उपघातक है। श्री कृष्ण के साथ वत्सपालक गोप बच्चे विहार कर रहे हैं, तो अकस्मात उस कथा के रस पर आघात हुआ। तो प्रश्न कर सकता है कि क्या जरूरत है सुखदेव गोस्वामी को ये कथा बोलने की, जो उस रस पर आघात किया है। या रस पर आघात किया, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि वो आघात करने वाला कोई रस नहीं है, एक दूसरा रस इस रस को दबा रहा है। तो दूसरे रस की कथा सुनिए। अघासुर का वहां पर आना और भगवान का उसके मुख में चले जाना, बच्चों का चले जाना, और इसके द्वारा भगवान का वात्सल्य अपने भक्तों के प्रति जो प्रकट हुआ, यह भी एक बहुत बड़ा रस। अब चूंकि भिन्न उपक्रम है इसलिए अथ शब्द लगा रहे हैं। अथाघ नामा भ्यपतन महासुरः तेषां सुख क्रीणन वीक्षणाक्षमः नित्यं जदंतर निर्जीवितेप्सुभिः पीतामृतैरप्यमरैः प्रतीक्षते। अथ पीतामृतैः अमरैः निर्जीवितेप्सुभिः जदंतः नित्यं प्रतीक्षते अघ नामा महासुरः तेषां सुख क्रीडन वीक्षणाक्षम तेषां सुखेन जत क्रीडनम तस्य वीक्षणे दर्शने अक्षम असमर्थ सन अभ्यपतत अकस्मात अति आजगाम। तो जब बच्चे इस तरह कृष्ण के साथ खेल रहे थे, तो वहीं पर अघासुर नामक एक महाअसुर पहुंचा और वह बच्चों के इस सुख क्रीड़ा को देर तक देखने में समर्थ नहीं हो सका। यद्यपि बच्चों की वह क्रीड़ा सबके लिए परम सुखद थी, परंतु कंस के अनुगामी अघासुर के लिए वह परम दुखद थी। इस तरह उन बच्चों का आपस में खेलना, हंसना और विविध जीवों का अनुकरण करना, ये सब देख करके उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। सुख क्रीड़न वीक्षणाक्षम, सुखपूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे, लेकिन उसको वीक्षण दर्शन दर्शन करने में वो समर्थ नहीं हो सका। वो जल गया देख करके, गोप बालकों का सुख और कृष्ण का सुख इतना आनंद में है। विशेष करके कृष्ण का इस तरह से सुख विहार उसको सहन नहीं हो सका। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उसका नाम था अघ, अघनामा। पता नहीं किसने नाम दिया था, उसके माता पिता दिए थे कि उसका कोई भोगस गुरु दिया था जो अघ नाम ही दिया था। अघ का अर्थ होता है पाप, वो मूर्तिमान पाप ही था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं अघासुर के विषय में कि वैसा भयानक और पापी, दूसरों को दुख देने वाला असुर था, जिसके मरण की प्रतीक्षा रात दिन करते रहते थे कौन लोग, जो अमर हैं। अमर लोग उसके मरने का डेट जोहते रहते थे कि कब मरेगा। प्रतीक्षते का अर्थ है कि वो मनाते रहते थे कि किसी तरह से ये मरे। जबकि वे पीतामृत हैं, अमृत पिए हैं एक बार समुद्र मंथन करके श्री भगवान ने अपने भक्त देवताओं को अमृत पिलाया है। एक तो ऐसे ही उनके जीवन की अवधि बहुत होती है और उस पर भी अमृत पी लिए हैं, फिर भी अघासुर से इतना भय था कि वे सोचते थे कभी हमको मार सकता है। तो पीता मृत ही अमरह रपि जद जस्य अंतः प्रतीक्षते, प्रतीक्षा में थे कि कब उसका मरण होगा। अथवा जद शब्द सुख क्रीड़नक के, सुख क्रीड़न के विषय में भी श्रीधर स्वामी जी ने किया है अन्वय। उस क्रीड़ा को अघासुर नहीं सह सका जिस क्रीड़ा की, लीला की प्रतीक्षा अपने हृदय में देवतागण किया करते हैं। यदि इनको पीने को अमृत मिला है, परम सुखी हैं, परंतु भगवान के लीला का सुख, कथा कीर्तन का सुख वे भी चाहते हैं। भगवान के जिस क्रीड़ा का वर्णन करके, श्रवण करके अपने जीवन को अधिकाधिक धन्य करना चाहते हैं देवता लोग, अपने हृदय में हमेशा इसी की का चिंतन करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कब हमारा जीवन धन्य होगा। तो इसका अर्थ है कि अमृत पीने से, स्वर्ग में निवास करने से, अधिक उम्र होने से ही जीवन का वास्तविक लाभ नहीं है। जीवन का वास्तविक लाभ है कृष्ण की लीलाओं का गान करने में, श्रवण करने में और स्मरण करने में। लेकिन जो यथाश्रुत अर्थ है वही ठीक लग रहा है यहां पर। अघासुर के अंत काल की प्रतीक्षा देवता लोग करते रहते थे, मनाते रहते थे कब मरेगा, कब मरेगा। क्यों? निज जीव तेप्सु भी, जो अमृत पिए हैं, अमर हैं, फिर भी अपने जीवन की इच्छा से जीवन हमारा रहे, हमारा बचे, इसलिए उसके मरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। अपने जीवन की इच्छा से उसके मरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसका अर्थ है कि अगर वो नहीं मरा तो एक न एक दिन देवताओं को मार करके ही रहेगा, यह अर्थ है। ऐसा वो पापी अघासुर ब्रज बालकों के उस सुख क्रीड़ा को सहन नहीं कर सका, अक्षमा, एकदम बर्दाश्त से बाहर हो गया उसके लिए। इस तरह से बच्चे खेल रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को आनंद होगा, है कि नहीं? अगर यह दो चार बच्चे खेलते हैं कथा के अलावा टाइम में, तो देख करके सुख मिलता है। कहीं भी गली में बच्चे खेलते हैं, कहीं खेलते हैं, हृदय में खुशी होती है, बच्चे निरोग हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन अघासुर इतना बड़ा पापी था, उसका हृदय इतना अशुद्ध था और दुष्ट था, उन बच्चों के सुख क्रीड़ा को वो सह नहीं सका। कौन था अघासुर? तो आगे सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते हैं। दृष्ट्वार्भकान् कृष्ण मुखान् अघासुरः कंसानुशिष्टः सबकी बकानुजः अयम् तु मे सोदरनाश कृत्तयोर् द्वयोरथैनम् सबलम् हनिष्ये। सह अघासुरः कंसानुशिष्ट, कंसेन प्रेरित। एक तो वह कंस का अनुगामी था, पक्का चेला था, उसके बस में रहता था, तो कंस ने उसे भेजा था, पूरा सरकारी पावर लेकर के आया था बच्चों को मारने के। कंसानुशिष्ट बकी बकानुज, और वैसे जन्म से ही बहुत दुष्ट था, बकी और बक का अनुज था, पूतना और बकासुर का छोटा भाई। और श्रीकृष्ण ने पूतना और बकासुर का वध कर दिया था। उस कारण से कृष्ण से बदला लेने के लिए यह आया था, और अपने स्वामी का हित करने के लिए, कंस का हित करने के लिए। कंस का हित क्या था? ब्रजवासियों को और कृष्ण को मार देना। तो सह अघासुर कृष्ण मुखान कृष्ण एवं मुखम प्रधानम जैसाम ते तान अर्भकान, कृष्ण प्रमुख बच्चों को दृष्टवा देखकर वो सोचने लगा। कृष्ण के साथ बच्चे सब खेल रहे थे तो विचार करने लगा, अयम तु मे सोदर नाशकृत, यह सांवला लड़का यह मेरे सहोदर सहोदरी बहन और सहोदर भाई का नाश किया है। फिर नाश किया तो वो कहीं जा करके थोड़े किया, वे लोग उसको मारने आए तो उसने मार दिया। पूतना को खोजते हुए भगवान तो गए नहीं थे, पूतना आई मारने के लिए बच्चे को, और जैसे तैसे बच्चा मारा भी नहीं, कोई तमाचा भी मारा होता, लात से भी मारा होता, कुछ नहीं किया। जैसे दूध पिलाने का बहाना करके आई तो ये भी दूध पीने लगा, और उसमें वो मर गई तो इसमें कृष्ण का क्या दोष है? लेकिन दुष्ट लोग अज्ञान बस अपने जनों के दोष को नहीं देख पाते। तो बकी बकानुज, बकी और बक का, पुतना और बकासुर का छोटा भाई, वो सोचने लगा कृष्ण को देखकर, अयम मे सोदर नाशकृत, यह मेरे सोदरय हो भगनी भ्रात्र हो नाशकारी, ये मेरे भाई और बहन का नाश किया है, उनका वध किया है। अथ इसीलिए तयो द्वयो हो, उन दोनों के लिए, बहन और भाई के लिए, उनके पिंडदान के लिए, उनका वास्तविक श्राद्ध करने के लिए, कृष्ण को इसकी सेना के साथ, बछड़ों और गोप बालकों के साथ, सबके साथ इसको मैं मारूंगा। यही मेरे द्वारा मेरे बहन और भाई का ठीक ठीक पिंडदान होगा। देखिए विचार, पिंडदान करने चला है, इसी का बाद में पिंडदान करने वाला कोई चाहिए। अपने सहोदर भाई को मारा है और सहोदरी बहन को मारा है। संसार में इसी तरह से लोग सोचा करते हैं, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा, लेकिन वो किस प्रकार का है, कितना खतरनाक, कितना दुष्ट भाई है और बहन है, ये विचार नहीं करते। देखिए, भगवान ने पूतना का वध किया और बकासुर का वध, तो पूतना के वध की बात तो सभी जानते हैं, और बकासुर के वध की कथा भी यहां कही गई थी। भगवान अपने साथियों के साथ बछड़ों को जल पिलाने के लिए सरोवर पर गए, और बछड़ों को जल पिलाए, स्वयं भी जल पिए। अभी वो वहां गए थे तब तक आकर के अकस्मात चोंच फैला करके कृष्ण पर आक्रमण किया, आक्रमण ही नहीं किया, निगल गया, जैसे कोई बगुला किसी छोटी मछली को पकड़ करके खा जाए, वैसे कृष्ण को खा गया बिल्कुल। और कृष्ण उसको मारे भी नहीं, फिर स्वयं ही उगल दिया कृष्ण को, और इसके बाद चोंच से जब प्रहार किया, मारने चला, तब वे उसके दोनों चोंच को हाथ से पकड़कर, दोनों हाथों से, और फाड़ दिए। क्या आत्मरक्षा भी न करें इस तरह से? भगवान तो अपनी रक्षा किए, पानी पिलाना बछड़ों को और स्वयं पानी पीना, ये कौन अपराध हो गया था? लेकिन कृष्ण के गुणों में भी दोष आविष्कार करके, दोष की भावना करके, और अपने स्वजन में चाहे कितना भी महादुष्ट हो उसमें गुण का आरोप करके और कृष्ण के प्रति इस तरह से द्वेष भाव पोषण करना, यही है खल का स्वभाव। अघासुर को कई बार खल कहा गया है, बहुत दुष्ट। तो मैं इसको इसकी सेना के साथ मारूंगा, बल के साथ, सबलम। इसका बल क्या है? इसके साथी और ये बछड़े, ये गोधन, ये सब इसके बल हैं। इन सबके साथ इसको मारूंगा। तो इस पर एक प्रश्न उठता है कि मान लो तुम बछड़ों को, गोप बालकों को, कृष्ण को मार दोगे, लेकिन जो ब्रजस्थ हैं, गांव में हैं, वे ब्रजवासी नंद आदि, वे तो सब जीवित ही रह जाएंगे। तो अपनी बुद्धि से सोचता है, एते जदा मत सुहृदोस्ति लापः कृतास्तदा नष्ट समा ब्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्म सुकानुचिंता प्रजा सवह प्राण भृतो हि एते। ननु तथापि ब्रजस्था अवशिष्यरन न इत्याह एत इति। एते कृष्णादयः बालाः जदा मत सुहृदोः मम भगनी भ्रात्र हो तिलापह प्रेत तर्पणार्थक तिलोदक रूपा कृता तिलोदक तया कल्पिता तदा ब्रजौकसः नंदादय सर्वे नष्ट समा मृत तुल्य किंवा नष्टा समा संवत्सर जैसा ते मृता एव भविष्यन्ति। ही जस्मात् ये प्राण भृत प्राणी ते प्रजा सव प्रजा अपत्यानी एव असव प्राणा प्राण तुल्य जैसा ते अत स्वतः एव मरिष्यन्ति। प्राणे गते निर्गते सति किंवा प्राणे प्राणभूते कृष्णे पुत्रे च नष्टे सति वर्ष्मसु देहेषु का नु चिंता तेषां नाशे किमपि भयं न भविष्यति इति यावत्। मन में एक बार विचार आया कि मान लीजिए कोई कहे अघासुर को कि ठीक है, इन बच्चों का विनाश करोगे, बछड़ों का, कृष्ण का, लेकिन ब्रजवासी जो गांव में रहते हैं वो तो सब बचे बचे ही रहेंगे। तब तो कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब इन बच्चों को मैं अपने भाई और बहन का तिलांजलि बना दूंगा, तिलोदक बना दूंगा, इनको तिलोदक बना दूंगा मतलब इनको मैं मार दूंगा, ये जब मर जाएंगे तब तो ब्रजव कसाय नंद आदि जो ब्रजवासी हैं ये अपने आप ही मर जाएंगे, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वे सब प्रजासव हैं, उनके लिए पुत्र अपना बच्चा ही प्राण के समान प्रिय होता है। जब कृष्ण मर जाएगा और ये बालक सब मर जाएंगे तो नंद आदि गोप अपने ही छटपटा करके हार्ट अटैक होगा, कुछ होगा, मर जाएंगे। उन सबको मारने का यही उपाय है कि कृष्ण को मार, यही सबका प्राण है, प्राण से भी बढ़कर के प्रिय है। तो जब प्राण किसी के शरीर से निकल जाता है तब उस देह से क्या भय है? प्राणे गते वर्ष मसुकान चिंता, चिंता का अर्थ भय, क्या भय होगा? इधर बच्चों को मैं मार देता हूं और कृष्ण को, बालक बच्चों को, तो ये ब्रजवासी सब अपने ही मरे हुए हो जाएंगे, वे हमको हमारा क्या अनिष्ट कर सकते हैं? वो मृतक शरीर की तरह हो जाएंगे। प्राणे गते वर्ष मसुकान चिंता, प्राण चले जाने पर शरीर से कुछ भय नहीं होता है, शरीर क्या करेगा? इस तरह का विचार है अघासुर का। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में कुछ न कुछ अपना लक्ष्य रखता है, विचार करता है, तो अघासुर का यह विचार है, ये समीकरण बना रहा है कि यदि मैं इन गोप बालकों को, बछड़ों को, कृष्ण को मार देता हूं तो मेरा काम पूरा हो जाता है, बाकी सारे ब्रजवासी मर जाएंगे। यही असली मूल है उनके। नेटवर्क बना रहा है, यहां से यहां तक ये करें ये करें। एक प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस संसार में यही विचार चलता है, कुछ इसी तरह यहां से ये करें, ये करने पर अपने आप सब काम हो जाएगा, ये करने पर अपने आप सब काम हो जाएगा। तो अघासुर का काम एक प्रकार से सबसे बेस्ट है। कुछ भी है बेचारा कृष्ण के ही बारे में सोच रहा है, और भगवान की लीला में एक उपकरण के रूप में होकर के धन्य हो गया। कितने प्राणी जन्म लेंगे लेकिन उनका कृष्ण से संबंध बहुत कम होता होगा। यह अघासुर जो भी सोचा, चाहे जितना भी उसका बुरा विचार रहा हो, लेकिन किसके विषय में सोच रहा था, सोचता था कृष्ण के विषय में, इसीलिए अघासुर की मुक्ति हुई। वह भगवान के संपर्क में आने पर सीधा मुक्त हो गया। सुखदेव गोस्वामी कथा में बता रहे हैं कि जब उसके प्राण ब्रह्म रंध्र से निकले, तो ब्रह्म रंध्र से प्राण के साथ, पवन के साथ एक महत ज्योति निकली, बहुत विशाल ज्योति, वैसा सूर्य नहीं चमक सकता है, और दसों दिशाओं को जगमग कर दिया उस ज्योति ने। और भगवान जब तक उसके पेट में थे, गले में, तो तब तक वो आकाश में प्रतीक्षा किया, और दसों दिशाओं को प्रज्वलित करता हुआ, प्रकाशित करता हुआ अस्थिर रहा। और जब श्री कृष्ण अघासुर के शरीर से बाहर आए, तब वह महान ज्योति भगवान के चरण कमल में आकर के समा, भगवान में समा गई। मतलब वह जीव अघासुर नामक शरीर में रहने वाला वह जीव इस तरह भगवान का पार्षद बन गया, भगवान में समा गया। ये उसको गति मिली। भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत स्वभाव है, किसी भी बुरे भाव से या अच्छे भाव से कोई उनके टच में आवे तो उसका कल्याण होकर कहीं रहेगा किसी भी तरह। ये भगवान का स्वरूप है। ये सोच रहा है अघासुर कि जब ये ब्रजवासी बालक और बछड़े कृष्ण के साथ मेरे भाई और बहन के तिलोदक बना दिए जाएंगे, अर्थात मार दिए जाएंगे, तब सारे ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे, उनको अलग से मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इति व्यवस्य आजगरम बृहद बपुः सयोजनायाम महाद्र पीवरम धृत्वा धूतम व्यात गुहाननम तदा पथि व्यसेत ग्रसनाशया खल। स खल इति अघासुर पूर्वोक्त प्रकारम, इति का अर्थ इस प्रकार, व्यवस्य इस प्रकार से व्यवसाय करके, निश्चय करके, वह अघासुर पथि व्यसेत, जिस तरफ बच्चे बढ़ रहे थे खेलते हुए और बछड़े चरते हुए, उसी पथ में, उसी मार्ग में बहुत विस्तार से शरीर धारण करके, सर्प का शरीर, और व्यसित सो गया, पड़ गया रास्ते में। सब बच्चे खेलते हुए, हजारों लाखों बच्चे खेलते हुए गाते हुए जा रहे थे, तो कैसा शरीर बनाया सर्प का, योजना या महाद्र पीवरम, योजना यामम योजन प्रमाणेन आयामेन दैर्घ्येण युक्तम च महाद्रिवत महापर्वतवत पीवरम अति स्थूल। एक योजन चार कोस का होता है और आठ माइल का, तो वह अघासुर चार कोस से मोटा सर्प का शरीर बनाया, इतना विशाल, और रास्ते में सो गया। अद्भुत अजगर का रूप धारण करके, सर्प का देह धारण करके, स्वरूप धारण करके, और वह सो गया उस रास्ते में जिस रास्ते में सुख विहार करते हुए बच्चे और बछड़े कृष्ण के साथ जा रहे थे, उसमें सो गया। सबको निगलने के लिए, सब हमारे उधर में आ जाएंगे, सबको चूर्ण कर दूंगा, इसके लिए वो सोया रास्ते में। सबको एक साथ खा जाने के लिए उपाय किया। बकासुर जैसा, वो भी यदि पर्वत जैसा ही था, लेकिन वो इतना उसका मुख विशाल नहीं था जितना इसका मुख विशाल था। योजना याम दीर्घ धृत्वाद भूतम व्यात गुहाननम, और मुख को बा करके खोल करके सो गया। व्यसेत का अर्थ है कि पड़ गया, सो गया। सो गया का अर्थ ये नहीं है कि सुखदेव गोस्वामी भूल से कह रहे हैं कि नींद में आ गया, नहीं नहीं, सो गया मतलब सोने का नाटक किया, पड़ गया, थोड़ा भी हलचल नहीं किया, थोड़ी भी चेतना नहीं दिखा रहा था। कुछ जीव ऐसे होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए वो मरे जैसे हो जाते हैं, दूसरे आदमी को भ्रम हो जाता है। जैसे बिल्ली, बिल्ली जब किसी चूहे को पकड़ना चाहती है तो एकदम माटी के धोंधा जैसा चुपचाप हो जाती है, कान भी नहीं हिलने देती है, आंख पर पलक भी नहीं गिरने देती, जिससे कि चूहा को पूरा पूरा भ्रम हो जाए कि यह कोई लकड़ी या माटी है। और जब चूहा फुदक फुदक करके आ करके उसके सिर पर चढ़ता है, कभी कुछ बिल्कुल अपने निकट रेंज में आ जाता है तब पकड़ लेती है। यही उपाय अघासुर कर रहा था। बच्चों को कभी भनक न मिल पावे कि यह वास्तव में एक सर्प है, वो समझ रहा था कि ये लोग तो समझेंगे कि ये कोई पर्वत है और ये हमारे मुख को पर्वत की गुफा समझेंगे, कोई पर्वत की गुफा है या कंदरा है घाटी, यही समझेंगे। और वास्तव में वही हुआ। बच्चे खेलते हुए जा रहे थे, खेलते हुए जा रहे थे, तब तक तो अकस्मात दृष्टि पड़ी विशाल पर्वत, उस सुने ही थे देखे ही थे कि गिरिराज जी हैं, गोवर्धन और पर्वत हैं, तो वे समझे कि ये महान सुंदर पर्वत आ गया है, और आपस में लगे बात भी करने कि हे मित्रों जरा ध्यान से देखो, अरे अरे लगता है कि सांप है। तो दूसरे कहे हाँ हाँ इतना सुंदर पर्वत है, एकदम अजगर के समान ही लग रहा है, ऐसा सुंदर पर्वत है, बहुत सुंदर पर्वत है, ये लोग प्रेक्षा कर रहे हैं। तो वो इति व्यवस्थ आज गरम बृहद बपू अपने बृहद शरीर को लेकर को सो गया। महाद्र पीवरम महापर्वतवत पीवरम स्थूलम, अति स्थूल था, बहुत मोटा है। ऐसे सांप का शरीर धारण करके मुंह खोल करके व्यात गुहाननम कृष्ण सहित सबको निगलने के लिए मुख फाड़ करके और रास्ते में पड़ गया, सो गया मतलब पड़ गया। व्यसेत किस आशय से सोया, ग्रसनाशया ग्रसन के आशय से, सबको ग्रस्त कर लूंगा खा जाऊंगा इस आशय से सो गया। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी उसके मुख का वर्णन कर रहे हैं, शरीर का। धरा धरोष्ठ जलदो तरोष्ठ दरियानो गिरिश्रृंग द्रंष्ट ध्वांतांतरास्यो वितता ध्वजिह्व परुषा नील श्वास दवे क्षण स्ण। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अद्भुत अजगर शरीर धारण करके वो सो गया, तो उसी अद्भुतत्व का वर्णन कर रहे हैं। धरा धरोष्ठ, धरा अधरोष्ठ, धरा मतलब धरायाम पृथिव्याम, अधरोष्ठ निम्नोष्ठ जस स, उसका नीचे का ओठ जिसको अधर कहते हैं, अधर नीचे का ओठ होठ है, उसको पृथ्वी पर लगाया बिल्कुल सटा करके, जिससे कोई जगह न हो कि कोई बच्चा नीचे से भाग जाए, बिल्कुल चिपका करके अपने अधर को। तो धरा धरोष्ठ धरायाम अधर अधर ओष्ठ जस, पृथ्वी पर अधर रखा और जलदोत्तरोष्ठ उत्तरोष्ठ ऊपर के ओठ को बादलों से लगाया, इतना ऊंचा इतना बड़ा। दरियानंत और आनन का जो अंत था उसका जो जबड़ा खोला, तो आनन का जो अंत था भीतरी भाग वो था पर्वत के कंदरा जैसा, मुख पर्वत के कंदरा जैसा। गिरिश्रृंग द्रंष्ट और अघासुर के दांत पर्वत के शिखरों के समान थे। पर्वत शिखर कितने बड़े बड़े होते हैं, ऐसे बड़े बड़े उसके दांत थे। ध्वांतांतराश्य और अंतराश्य उसके मुख के भीतर बहुत अंधकार था। ध्वांतांतराश्य उसके उसका मुख है अंधकार से भरा हुआ था। पर्वत की गुफा में अंधकार रहता ही है। वितता ध्वजिह्वा, वितत विस्तृत फैली हुई उसकी जिह्वा एक विशाल फैले हुए रोड के समान लग रही थी। हमने देखा है लंदन में कहीं कहीं बिल्कुल लाल रोड है, ऐसे काला नहीं उजला नहीं, लाल रोड है। उसको देख करके मुझे अघासुर की जीभ की याद आ रही थी। जीभ को फैलाया था तो जीभ के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वितत अध्व। वितत मतलब चौड़ा, बहुत विस्तार से, हाईवे जैसा, महामार्ग जैसी उसकी जिह्वा थी। जब बच्चों को उस रोड पर चलने का इतना उत्साह हो के दौड़ करके चले, कोई कांट कुश कोई है नहीं, कंटा कुश और चिकनी जिह्वा, इसीलिए विस्तार किया था कि बच्चे चिकना पत्थर का रोड समझ करके और दौड़ करके आएंगे। वितत अध्व, अध्व माने महामार्ग, विस्तृत महामार्ग की तरह उसकी जिह्वा थी। और परुषा नील श्वास दवे क्षण स्ण, परुषा नील श्वास, परुष कठोर या गरम, अनिल श्वास, और जो श्वास ले रहा था, आखिर सांस तो बंद करेगा नहीं, सांस छोड़ रहा था ले रहा था, तो वह परुष अनिल था, बहुत भयंकर। सांस छोड़ता था तो उसमें उड़ सकता है, लेकिन जब सांस छोड़ता था अघासुर तो वो थोड़ा हिसाब से धीरे धीरे छोड़ता था, और अपने भीतर जब खींचता था तो बहुत जोर से आंधी जैसा, उसमें झोंका से भी कोई चला जाए ऐसे था, बाहर सांस छोड़ता था भीतर लेता था, तो उसकी सांस बहुत परुष थी, परुष हवा जैसी, और एक क्षण उसकी आंख कैसे दिखाई दे रही थी उस अजगर की, लगता था कहीं दवानल लगा हुआ है, दवानल लगने से जैसे लाल लाल लपटे दिखाई देती हैं, इस तरह से उसकी उष्ण आंखें थी, उसकी इच्छा आंख। दरिया ननंद दरियो गिरिकंद्रो इव अननस्य अंतो श्रीकणी जसस, दोनों जबड़े थे वे पर्वत की कंदरा के समान थे। ध्वांतांतराश्य ध्वांतम तमह अंतराश्य मुख मध्ये जस वितता ध्वजिव वितत विस्तृत पंथा इव जिह्व जसस परुषा नील श्वास दवे क्षणोष्ण परुषा परुष अनिलवत कर्कस वायुवत श्वास जस सवत क्षण वनाग्निवद तदर्शन उष्ण दाहक दृष्टि। उसकी आंखें कैसी थी, उसको देखने में आंखें कैसी लगती थी, ऐसा लगता था कि जंगल में आग लगी है, आग लगी है, और वन के अग्नि की तरह उस दाहक थी, उसको उसकी आंख पर देखा नहीं जा सकता था। जैसे दवाग्नि लगने पर व्यक्ति उसे देखता है तो जलन जैसा होता है, ऐसे दाहक दृष्टि थी उसकी। तो जीभ है विशाल पथ के समान, आंखें दवानल के समान, और श्वास परुष अनिल के समान, कठोर वायु के समान। इसको देखे बच्चे बिल्कुल निकट से, लेकिन वे यही समझे कि ये कोई वृंदावन की शोभा विशेष है, ये पर्वत है, भगवान ब्रह्मा जी ने अजगर के रूप में पर्वत का निर्माण किया है, कि जो कलाकार हैं ब्रह्मा जी तो उनको ये भाव नहीं हुआ कि वास्तव में यह अजगर है, यह पर्वत, ये सर्प है। सर्प में पर्वत बुद्धि हो रही है और उपेक्षा कैसे कर रहे हैं, अजगर के अंगों से समानता बता रहे हैं, यह है उत्प्रेक्षा, तुलना कर रहे हैं। दृष्ट्वा तम तादृशं सर्वे मत्वा वृंदावन श्रियं व्याताजगर तुंडे न ह्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। सर्वे बालकाः तम अघासुरं तादृशं धृत सर्प देहं दृष्ट्वा वृंदावन श्रियं, वृंदावनस्य श्री संपत एव इति भ्रांत्या मत्वा उपधार्य, अर्थात महासर्प बुद्ध्या काश्चित पलायमानान आश्वासयंत सर्वे अन्य मत्वे भाव। जब सर्प के आकार में उन लोगों ने देखा, कुछ बच्चों को तो भय हुआ, कुछ को भय हुआ, यहां तक कि कृष्ण को भी, अरे महान सांप, हम तो उसके मुख में जा रहे हैं, निगल जाएगा, तो कुछ लगे हंसने का रहे, उनको आश्वासन देते हुए लोग उत्प्रेक्षा करने लगे, देखो अद्भुत पर्वत है, ये पर्वत की गुफा ऐसी है कि सांप के खुले हुए मुख के समान लग रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। उत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया, लीला से उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, जिसे कि सुनने वाले को भय न हो, सुनने वाले का भय दूर हो जाए, इस तरह बच्चे आपस में उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, अरे देखो देखो, अरे बिल्कुल सांप के जीभ जैसा ये रोड लग रहा है, इस तरह की उत्प्रेक्षा करना। अजगर के देह को खोले हुए मुख को देख करके और ये कहना कि वो ये पर्वत का जो की गुफा है, इस सांप के खोले हुए मुंह के समान लग रहा है कि नहीं, जरा बोलो तो, देखो हमको तो ऐसा लग रहा है, इतना सुंदर पर्वत है, ऐसा हो रहा है। ये उपेक्षा कर रहे हैं। व्यात अजगर तुंडे न, बाए हुए मुख के, बाए हुए सर्प के मुख के साथ उसकी तुलना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा करने लगे। लीला से पूरा धारणा है कि यह वास्तव में अजगर नहीं है, यह पर्वत है, क्योंकि वह निश्चल था। कुछ भी होता यदि स्पंदन, कुछ वो हिलता डुलता और आंख पर पलक गिरती है कि कुछ होता, तब कुछ शक होता है। तो बिल्कुल निश्चल अचल पर्वत के समान था, इसीलिए पर्वत बुद्धि ही उसमें रही, और सर्प बुद्धि हो रही थी तो इसको भ्रांति समझ रहे थे। पर अजगर के मुख से ही उपमा दे रहे हैं। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरस्थितम, सभी रुक तो गए, एक बार भय हुआ तो रुक गए, सीधे उसके मुख में जाना उचित नहीं था। भले पर्वत है, पर्वत है लेकिन अंधकार से भरा हुआ है उसकी गुफा, तो इसलिए रुके और कुछ भागना चालू किए गोप बालक। तो और लोग आश्वासन देते हुए कहते हैं, हे मित्राणि, हे मेरे मित्रों, गदत, जरा तुम भी बोलो, तुम बोलो ये क्या है, कितना सुंदर पर्वत है। सत्वकूटम पुरस्थितम, ये सामने सत्वकूट है, सत्व मतलब प्राणी और कूट का अर्थ है अचल। ये बिल्कुल अचल प्राणी है कि नहीं, बताओ, तुम बोलो, ये अजगर है कि नहीं। दूसरे कहा, ये तो एकदम अजगर जैसा ही लग रहा है, ये तो बिल्कुल अजगर जैसा लग रहा है, जैसे कोई अजगर बिल्कुल चुपचाप हो जाए। कूट, कूट का अर्थ है स्पंदनहीन, यह लग रहा है कि नहीं। पुरस्थितम सामने बिल्कुल हम लोगों के है। अस्मत संग ग्रसन व्यात व्याल तुंडा ये नवा, हम लोगों को ग्रसने के लिए यह सांप के खुले हुए मुख के समान है कि नहीं। ये पर्वत है लेकिन लग रहा है कि अजगर। पूछते भी हैं, गदत बदत, तुम भी बोलो, ये हम लोगों को संग्रसन ग्रसित करने के लिए, खा जाने के लिए, सर्प के खुले हुए मुंह के समान लग रहा है कि नहीं। तो दूसरे कहते, एकदम लग रहा है, एकदम अजगर ही लग रहा है, कोई भय नहीं हो रहा है। और इस तरह से वे तो खेल रहे हैं, आनंद में हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ग्रसने के लिए अजगर मुंह खोल करके यहां है, ऐसा लग रहा है। हे मित्राणी, हे बंधव, पुरस्थितम अग्रे वर्तमानम सत्वकूटम निश्चल प्राणी विशेष, अर्थात प्राणीवद भासमान कश्चित जीव न वा, देखो ये अजगर है कि नहीं, अजगर जैसा लग रहा है कि नहीं, तुम भी बोलो, गदत बदत। और इस पर भी, हे मित्र, अस्मत संग्रसन व्यात व्याल तुंडम, हम लोगों को ग्रसने के लिए व्यातम प्रसारितम, फैलाए हुए सर्प के मुख के समान लग रहा है कि नहीं। न वा इति निर्णय वक्तव्य इति, तुम ही निर्णय करके कहो, तुमसे हम पूछते हैं, तुम बोलो ये अजगर के मुंह के समान है कि नहीं। तो बहुत खुश थे कि हाँ, एकदम अजगर के मुंह के समान लग रहा है। सत्यम अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुवत घनम अधरा हनुवत रोधस तत्प्रतिच्छायारुण, जब पहले मित्रों ने कहा कि तुम भी बोलो, एकदम सर्प के मुंह के समान लग रहा है कि नहीं, तो दूसरे कहते हैं, सत्यम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, सत्य बात है, तुम जो कह रहे हो सत्य है। जब पहले ग्रुप ने प्रश्न किया तो दूसरे अनुमोदन कर रहे हैं, हाँ ठीक सत्यम। अर्क करा रक्तम उत्तरा हनुमत धनम, ठीक कहते हैं। ये जो प्रातःकालीन सूर्य की किरण पड़ने से जो ऊपर का पर्वत लाल हो गया है, ऊपर का अंश ऐसा हुआ था कि सूर्योदय हो रहा था, सूर्योदय हुआ था और बच्चे पश्चिम के तरफ मुख किए थे और अघासुर पूर्व के तरफ, तो उसका जो लाल लाल जबड़ा दिखाई दे रहा है, लाल ऊपर का तालु, उत्तर हनु कहते हैं, ऊपर का उत्तर माने ऊपर का, ऊपर का ऐसे खोला था तो लाल लाल दिखाई दे रहा है। तो बच्चे कहते हैं ठीक कहते हो, ये जो ऊपर के जो बादल हैं वे सूर्य की किरणें पड़ने से लाल लाल दिखाई दे रहे हैं, बादल सागल कुछ नहीं है, उसका लाल भीतर का मुख का भाग है अघासुर का, लेकिन उसको कह रहे हैं कि यह सत्य कहते हो, सूर्य की किरणें पड़ने से ये लाल लाल जो बादल दिख रहे हैं ये उत्तर हनु है। अजगर के रूप में खुला हुआ मस्तक है तो उसको ये समझ रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा पर्वत शिखर जैसा है। ऐसे कभी कभी आपने देखा होगा कोई कोई पर्वत ऐसे खुले रहते हैं, लटके रहते हैं, बीच में खाली ऐसे दिखता है। जिन लोगों ने पहाड़ में भ्रमण किया होगा कई जगह देखे होंगे, हमने तो देखा एक जगह पर, मैं भय लग रहा था कि कहीं पर्वत गिर ना जाए बस पर, ऐसी तो उसी तरह से वे समझ रहे हैं वो जो मुख खुला है तो उत्तर का हनु लाल लाल है। तो ये प्रेक्षा करें कि सूर्यकालीन प्रातःकालीन सूर्य किरणों के कारण ये मेघ लाल लाल हो गए, वो मेघ नहीं है वास्तव में, उसका लाल मुख है ऊपर का। और अधरा हनुमत रोधस्त प्रतिच्छाया रुणम, और ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो उसकी प्रतिछाया परछाही से नीचे का भी उसका जो मुख का भाग है वो भी लाल हो रहा है। तद्रोध तस घनस्य प्रतिछाया रक्त वर्णम स्थलम रोध, नीचे का जो स्तर है, इस पर्वत के नीचे का जो जमीन है वह भी उस लाल लाल बादल के कारण लाल लाल दिख रहा है। ऐसा है कि नहीं? हाँ एकदम ऐसा है। देखो ये अजगर के जीव जीव जैसा लग रहा है, है पर्वत लेकिन अजगर के मुख जैसा लग रहा है। प्रतिस्पर्धे ते सिरकी भ्याम सभ्य सभ्य नगोदरे सिरकी भ्याम तस ओष्ठ प्रांता भ्याम, ओठों के किनारे और भीतर के भाग को सिरकी कहते हैं। सर्प अपने जिह्वा से चाटता रहता है अपने जबड़ों के भाग ओठ को, तो सभ्य सभ्य वाम दक्षिण यो दक्षिण स्थित नगोदरे, ये जो नग के उदर हैं, नग मतलब इस पर्वत की दरिया, दो दरिया, दरी कहते हैं कंदरा को, इस पर्वत की जो कंदराएं हैं, दो कंदराएं, ये सर्प के बाएं और दाहिने जबड़े जैसे हैं कि नहीं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो पर्वत के कंदरे, दो कंदरे अजगर के श्रीकी से जबड़े से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि नहीं? अर्थात तुल्यतया वर्तेते, ये पर्वत के कंदरे सर्प के जबड़े के समान लग रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल लग रहे हैं। और तद्रष्टाभिश्च एतः तुंग श्रृंगय, और जो पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हैं, पर्वत शिखर की श्रेणियां हैं दांत सजे हुए, ये बड़े बड़े शिखर अजगर के दांत के समान लग रहे हैं कि नहीं? वास्तव में वो दांत है, बहुत बड़ा बड़ा, इतना बड़ा रूप बनाया था तो दांतों को चक्की जैसा भी भारी भारी फिट किया था ना, वो शरीर के साइज के अनुसार ही। उसको देख करके बच्चे कह रहे हैं ये पर्वत शिखर श्रेणियां हैं, ये पर्वत के शिखर समूह हैं, 32 शिखर जैसे मनुष्यों के होते हैं। तो ये पर्वत शिखर अजगर के दांत से होड़ ले रहे हैं कि नहीं? अर्थात अजगर के दांत जैसे लग रहे हैं कि नहीं? तो कहते हाँ बिल्कुल लग रहे हैं। सब ताली पीट पीट कर हंसे एकदम, ये तो अजगर के दांत जैसे लग रहे हैं। और अयम आश्रितायाम मार्ग, यह जो फैला हुआ विस्तृत मार्ग है इस पर्वत के भीतर जा रहा है, ये फैला हुआ जो मार्ग है वो अघासुर के जिह्वा के लिए कह रहे हैं। यह विस्तृत आयाम वाला मार्ग रसनम प्रतिगर्जति, यह अजगर के जिह्वा जैसा लग रहा है कि नहीं? ये रोड देखो ध्यान से, रास्ता जमीन, यह अजगर के लाल लाल जिह्वा के समान लग रहा है ना? और एसाम अंतर्गत ध्वांतम, और जो भीतर अंधकार दिख रहा है, ये दांतों के बीच में जो अंधकार है, यह अजगर के मुख के भीतर के अंधकार जैसा लग रहा है कि नहीं? तो अजगर के मुख का ही वो अंधकार है, लेकिन मान रहे हैं कि पर्वत शिखरों के भीतर जो अंधकार है, शिखरों में मतलब दांतों के अंदर भीतर जो अंधकार दिख रहा है, यह ठीक है पर्वत, ये पर्वत के अंदर का गुफा का जो अंधकार है वह अजगर के मुख के अंधकार के समान लग रहा है कि नहीं? इस तरह से उपेक्षा कर रहे हैं, भगवान साथ में है। इस तरह असत्य को असत्य समझना, वास्तव में है अजगर और उसको पहाड़ कह करके फिर कहते हैं कि यह पहाड़ का यह अंग अजगर के इस अंग के समान लग रहा है कि नहीं? तो सभी बच्चे हंस हंस करके उत्प्रेक्षा कर रहे हैं, सुन रहे हैं और कहते हैं तुम तो बहुत अच्छा बोले, दावोष्ण खर बातो यम श्वासवत भांति पश्यत। ये जंगल में जो आग लगी है दावोष्ण, दावानल के समान उष्ण गरम और खर कठिन हवा आ रही है। जब जंगल में आग लगती है तो उस अग्नि से टकरा करके जब हवा चलती है तो वह बहुत कठोर होती है और उष्ण होती है। उस कठोर अघासुर के कठोर श्वास को, गर्म श्वास को पाकर का अनुभव करके कहते हैं यह पर्वत में जो आग लगी है, दवानल लगा है, यह अजगर के श्वास के समान लग रहा है ना? इति पश्यत, देखो जरा विचार करो, ये जो हवा आ रही है इस पर्वत के भीतर से, ये बहुत कर्कश है, बहुत कठोर है और बहुत गर्म है, तो यह अजगर के पेट से आने वाली हवा के समान लग रही है ये हवा। और तद्दग्ध सत्व दुर्गंध प्यंतस अंतरामिश गंधवत, और इस पर्वत के भीतर जो दवानल लगा है उस दवानल में अनेक प्राणी जल गए हैं, उनके जलने से दुर्गंध निकल रही है। वास्तव में अघासुर तो अनेक जीवों को खाया था, खाता रहता था, तो उसके पेट से आमिष गंध मांस सड़े हुए मांस पके हुए मांस की गंध की तरह गंध आ रही थी, कई जीवों को खाया था। तो ये समझ रहे हैं कि पर्वत में आग लगी है, दवानल लगा है, उसमें कई जीव मर गए हैं, जल गए हैं, तो इसीलिए दुर्गंध निकल रहा है। तो उत्प्रेक्षा क्या करते हैं, जरा विचार करो, पश्यता सब जगह लगेगा, पश्यता विचार करो, अजगर के द्वारा दग्ध खाए हुए जीवों के मांस की दुर्गंध से युक्त ये हवा आ रही है, यह दुर्गंध वे उत्प्रेक्षा करें कि अजगर के द्वारा खाए हुए जीवों के दुर्गंध के समान है कि नहीं। हाँ ठीक है, विचार कर पश्यत, तो सब कुछ तो बैठा ही नहीं कि अजगर है, सांस अजगर का है, ये जिह्वा अजगर का है, आंख अजगर की है, सब कुछ, और वास्तव में वो अजगर है, पर इनको तो आनंद आ रहा है ये सोच करके पर्वत ही ऐसा बना हुआ है कि अजगर जैसा लग रहा है, जबकि बात उल्टी है कि वो अजगर ही पर्वत जैसा लग रहा है, वो है वास्तव में बहुत विषधर भयानक खतरनाक अजगर और पर्वत जैसा लग रहा है, पर्वत की घाटी जैसा या दवानल जैसा और सब कुछ अंग लग रहा है, पर उसको ये उत्प्रेक्षा कर रहा है, उसी को पर्वत बना करके अजगर को ही और अजगर के अंगों से उत्प्रेक्षा कर रहा है। यह अद्भुत बात, भगवान सब देख रहे हैं और साथ में वो भी हैं, जब वे उत्प्रेक्षा करते हैं आश्चर्य व्यक्त करते हैं तो भगवान भी लगे हुए। तो भगवान ये नहीं जानते थे कि ये सब मुंह में चले ही जाएंगे उसके, तो अंधकार सामने है और कठोर श्वास आ रहे, मतलब वो हवा गर्म आ रही है, दवानल जैसी आंखें है, सब कुछ है, फिर भी आनंद से झूमते हुए खेलते हुए कहते चलो 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 चलो, अभी कृष्ण है ना, देख लेंगे। किसी किसी को भय हुआ कि नहीं 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 जाना चाहिए, भले सांप न हो, घोर अंधकार से पूर्ण यदि पर्वत की गुफा हो तो उसमें भालू रहते हैं, सांप रहते, कौन जाएगा, लेकिन ये डरे नहीं और चलते गए चलते गए। कोई कोई डर करके रुक रहे थे सखा, कि नहीं एकदम लग रहा है कि एकदम अजगर है, सर्प है, तो दूसरे साहस करके कहते हैं अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान, जब हम इसके मुख में प्रवेश करेंगे, इस पर्वत के गुफा में जाएंगे, तो क्या ये हमको ग्रस लेगा। जब मान लो सचमुच के अगर यह अजगर ही हो, तो विश्वास है कि अजगर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि यह अजगर ही मान लो, तो हम लोग जब इसके भीतर जाएंगे तो क्या हम लोगों को ग्रस लेगा, हम लोगों को खा जाएगा। अरे ये नहीं खा सकता है, इतने साहस में थे, ये भागने की जरूरत नहीं है, चलो चलो उत्साह के साथ। अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान, सभी मिल करके, और सभयम आओ, कुछ भय तो हो रहा है भय हो रहा है लेकिन उत्साह ज्यादा है, तो मिल करके कहते हैं अत्र निविष्टान, इस बिल में हम जब घुस जाएंगे तो क्या यह हम लोगों को ग्रस लेगा। क्या ये ग्रस लेगा, इतने सुख में है भगवान के साथ रह करके, इतने आनंद में है कि उनको इस भावी विपत्ति का कोई भाव भासी नहीं हो रहा है, यह आनंद का आधिक्य कारण है, इतना सुख में है, इतना आनंद में है भगवान के साथ कि उस घोर संकट में, उस अजगर के मुंह में जाने में भी इनको कोई भी संकोच नहीं हो रहा है। क्या यह हम लोगों को ग्रस लेगा, अयम तथाचित बकवत बिनं क्षति, यदि ऐसा होगा, यदि यम भविष्य, यदि ऐसा होगा, अगर ये हम लोगों को ग्रसना चाहेगा तो बकवत विनंक्षति, बकासुर की जो हालत हुई ना इसकी भी होगी। जी बाप रे बाप, इतना साहब, बकवद बकासुरवत, जैसे बकासुर चीर दिया गया ना, ऐसे ही ये भी चीर दिया जाएगा। क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों इतना साहस करो, मान ले दो चार सखा, कुछ भय होना भी एक लीला का सौंदर्य है, कुछ को भय हो रहा है, नहीं 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 चलना चाहिए, नहीं नहीं चलो, खेलते हुए कूदते हुए दौड़ते हुए जा रहे हैं। अगर एक ग्रसने की कोशिश किया ना तो बकासुर की तरह विनंक्षति, नाश को प्राप्त होगा। क्षणाद अनेनेति, ये है ना हमारे साथ, अनेन इति, कृष्णेन न कह करके अनेन कह रहे हैं, ये है ना अनेन कृष्णेन, कृष्ण के द्वारा यह क्षण भर में विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इति बकारी उसन मुखम, बकहंता, बकासुर का वध करने वाले भगवान का कमनीय मुख देखते हुए और ताली बजाते हुए, ताली पीटते हुए और भीतर चले ही गए, और भगवान वहीं पर हक्का वक्का देख रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वे रोकने का सोच रहे थे अपने अपने प्रेमियों को, अपने भक्तों को, कि रोके इस खतरा से, बचा ले, और तब तक तो चले। क्या भगवान की इच्छा शक्ति काम नहीं, कि सब कुछ से भगवान की लीला है, रोकने का सोच रहे थे तब तक तो अजगर के पेट में समा गए, चले गए सीधे पेट में चलते गए। और वहां जा करके एक तो तुरंत आभास हुआ जाते ही कि अजगर है, तो कृष्ण का विरह हो गया इस ज्वाला से, और अघासुर के पेट की जठर की ज्वाला से वो तुरंत मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, मर गए। उधर जाना था कि इतना कठिन आंच थी उसके पेट की, तो वहां मर गए। और कृष्ण के विरह की भावना करते ही, मर तो सकते नहीं, वो तो चिन्मय शरीर वाले हैं, ये बेहोश हो गए। भगवान की लीला शक्ति ही एक कारण हुई, कोई उन बालकों को और बच्चों को मार नहीं सकता है। जो चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है, भगवान के नित्य पार्षद, उनको कोई मार नहीं सकता, लेकिन फिर भी वे बेहोश हो गए। लेकिन कितना भरोसा है भगवान पर, बकारी उसन मुखम, बकारी के श्री कृष्ण के कमनीय मुख को देखते हुए और करताज ने ताली पीटते हुए गए। करताडन का एक अर्थ है, एक भक्त करते हैं कि ताली इसलिए पीट रहे थे कि अगर सचमुच के अजगर होगा तो हो सकता है इतना ताली पीटने से भाग जाए, भागने वाला नहीं था, तो ताली पीटो चाहे कुछ, लेकिन ताली वो आनंद में पीट रहे थे, ताली बजाते हुए और बहुत वेग से। बछड़े तो आगे जा ही रहे थे, बेचारे बछड़े तो कुछ विचार किए नहीं, वो सब चले गए, बाद में सभी बच्चे चले गए। कृष्ण के मुख को देखते हुए और हसंत उद्हसंत, उच्च स्वर से हंस रहे थे, हा कर रहे थे, चलो 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 ये शोभा देखें। पूरा ये सोच रहे थे कि यह कोई पर्वत की शोभा विशेष है, वृंदावन की, नए पर्वत में इसमें जाएंगे, लुका छिपी का खेल खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चले गए। इत्थं मितो तथ्य पव्यभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषा मृषायते रक्षो विदित्वा खिलभूत हृतस्थितः हृत्सुतः स्वानां निरोधं भगवान् मनो दधे, निरोधं भगवान् मनो दधे। इस प्रकार गोप बालक परस्पर में बातें कर रहे थे, और तथ्यं अतज्ञ भाषितम, अपने भक्तों की बोली को भगवान सुन रहे थे। स्वानं मिथः परस्परम अतज्ञ भाषितम, यदि वे अतत्वज्ञ थे, यथार्थ अजगर को वे नहीं जानते थे, ये नहीं समझते थे कि वास्तव में वह जीवित अजगर है, ऐसा नहीं जानते हुए ये बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? अतथ्यम, अन्यथार्थम। जो समझ रहे थे वह बात नहीं थे, वो वास्तव में अजगर था, वो कोई पर्वत नहीं था। तो भगवान उनकी बातों को जो अयथार्थ हैं, उचित नहीं थे, उसको सुने, क्योंकि अमृषा सत्यम मृषायते, बाए हुए अजगर के मुख, बाए हुए अजगर का मुख होते हुए भी उसको वे पर्वत की गुफा से, कंदरा से उपमा दे रहे थे। यह सोच करके भगवान अब सोचने लगे, ये तो बोल रहे हैं गलत, इनका अनुभव गलत है, ये सर्प को सर्प नहीं समझ रहे हैं। तो भगवान ये सोचे कि यह केवल सर्प नहीं है, सर्प तो है ही, अजगर तो है ही, परंतु केवल अजगर नहीं है, यह राक्षस विदित्वा, यह राक्षस है। सर्प के शरीर में, सर्प के शरीर में यह आया है, परंतु वास्तव में यह राक्षस है, हमारे मित्रों को तुरंत खा जाएगा। यह सोच करके तान निरोधुम मनोदधे, तान निवारयितुम इच्छा मत करो, भगवान उनको रोकने की इच्छा किए, चाहते थे उनको पीछे से पुकारे हैं, आगे दौड़ करके रोके कि नहीं 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 नहीं, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। भगवान सोच ही रहे थे तब तक तो ताली बजाते हुए चले गए भीतर। भगवान सोच रहे थे, तो क्या भगवान का सोचना भी अन्यथा हो जाएगा? लेकिन रोकने की सोचना, यह भी भगवान की एक लीला है। रोकने की सोच रहे थे परंतु थोड़ी देर हो गई और लोग आके पढ़ते चले, दुर्घटना हो गई। तावत प्रविष्टा स्वसुरोदरांतरम परम न गिरणा शिशव सवत्सा प्रतीक्षमाणेन वकारि वेशनम हता स्वकांत स्मरणे न रक्षसा। जावत निवारणे मनोदधे, जब भगवान मन में सोच ही रहे थे कि इन सखाओं को, बछड़ों को रोकना चाहिए, रोकने का सोच ही रहे थे, तब तक सवत्सा शिशव, बछड़ों के साथ बालक गण, वत्सय सहिता शिशव असुरो दरांतरम परम प्रविष्ट, अघासुर के पेट में समा गए, चले गए भीतर। भगवान नहीं गए, भगवान सोच रहे थे रोकने को, तब तक वो चले गए। पर केवल परम प्रविष्ट, प्रविष्ट भर हुए, अघासुर ने उनको चबाया या चूर्ण नहीं किया, जो उसके पर्वत शिखर के समान दांत थे, उन दांतों से दबाया नहीं, और पेट में भी उनको चूर्ण नहीं किया। सांप का यह स्वभाव होता है अजगर का, कि कुछ खा लेता है तो बाद में अपने शरीर को मोड़ करके जैसे तैसे वो भीतर खाए हुए जीव को तोड़ ताड़ करके उसे हड्डी को भी चकनाचूर कर देता है, अपने शरीर से ही तोड़ देता है, ये स्वभाव है सर्प का। लेकिन वो कुछ किया नहीं, शरीर मोटन, शरीर को भांजना मोड़ना नहीं किया, जैसे किसी घर में वे समा गए, इतना बस समाये भर। परम प्रविष्टा, परम का अर्थ केवलम प्रविष्टा, न तो गिरणा, वास्तव में अघासुर उनको चबाया नहीं, उनको निगला नहीं, उनको शरीर के भीतर अपने आप में पचाया नहीं, केवल निगल लिया, केवल वे लोग भीतर चले गए। क्यों नहीं वो चबाया बच्चों को या बछड़ों को? क्योंकि हत स्वकांत स्मरणे न, वह अघासुर अपने मरे हुए या मारे गए भाई और बहन के, अपने भाई और बहन के अंत का स्मरण कर रहा था, किस तरह से उनकी मृत्यु हुई, हमारी बहन पुतना किस तरह से मारी गई, और हमारा भाई बकासुर किस तरह मारा गया, इसी का स्मरण कर रहा था। और इसका स्मरण करके वो ये सोचा कि अरे असली जिसको मारने आया वो तो अभी हमारे मुंह में आया ही नहीं, इसलिए उन लोगों को नहीं चबाया, सोचा कि वो आ जाएगा तब इसके बाद चक्की गिराऊंगा और पीस पास करके खत्म करूंगा। वो खुला ही रह गया, मुंह खुला ही रह गया। प्रत्यक्ष मारे ना वकारी वेशनम, बक की हत्या करने वाले भगवान कृष्ण के प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा है। सब आए लेकिन ये अघासुर के भाव का ही अनुवाद कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। वो सोचा ये दुष्ट बकारी नहीं आया, अभी बक का शत्रु नहीं आया, हमारे भाई की का हत्यारा अभी नहीं आया हमारे मुख में, तो इसीलिए उनके प्रवेश की प्रतीक्षा कर रहा था खुले खुले। तान्वीक्ष कृष्ण सकला भय प्रदो, सबको अभय दान देने वाले भगवान, वे सबको अभय देते हैं, काल व्याल से रक्षा करते हैं, तो फिर अपने मित्रों की रक्षा करें ये कौन बहुत बड़ी बात। सर्वेषाम अभयदाता कृष्ण, सबको सबका भय दूर करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले भगवान कृष्ण सोचे देखे स्व कराद अवच्युता, ये बच्चे तो हमारे हाथ से निकल गए, हमारे अभय हस्त से बाहर हो गए। यह भी भगवान का विचार और उनकी लीला अद्भुत है, जो देखे कि बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, मतलब ऐसे जगह चले गए जहां हमारी कोई गति नहीं है। अब उनको भीतर से हाथ बढ़ाकर थोड़े निकाल सकते हैं, और कोई उपाय ही नहीं, कोई व्यक्ति बाघ के मुंह में चला जाए या अजगर के मुख में चला गया तो अब उसके विषय में क्या किया जा सकता है। लेकिन श्री कृष्ण है सकला भय दाता, सबको अभय देने वाले, देखे कि बच्चे हमसे दूर हो गए, उसके मुख में गिर गए चले गए, और मृत्यु हो जठराग्नि घासन, मृत्यु तुल्य अघासुर के मुख में तृण के समान अभी जल जाएंगे जठरानल में, अजगर के पेट की अग्नि में ये तृण की तरह पड़ गए। घास का अर्थ होता है तृण, और घास माने कवल, कवल भी होता है। भगवान ने देखा कि हमारे सब मित्र मृत्यु स्वरूप अघासुर के जठराग्नि में तृण तुल्य पड़ गए, और ये दीन है, मरण के कारण हमसे इनका विच्छेद हो जाएगा, हमसे विरह की भावना से ये अति कातर हो गए, मूर्छित हो गए। अनन्य नाथ न विद्यते अन्य नाथो जैसा संतान, इनकी रक्षा करने वाला, इनका पालन करने वाला मेरे अलावा और कोई दूसरा नहीं है, भगवान ने सोचा। तो उन्हें बालकों को इस दशा में देख करके विचार करके भगवान घृणा से भर गए। संस्कृत में घृणा का अर्थ होता है स्नेह, कृपा, कृपा से पीड़ित हो गए। इतनी कृपा उमड़ी हृदय में, उसको कहते हैं कृपा से पीड़ित, कृपा से द्रवित हो गए, और अपने मित्रों को बच्चों को बचाने के लिए सोचने लगे। कृपा से जब पीड़ित हुए, स्नेह उमड़ गया, स्नेह तो नित्य है ही लेकिन उस समय अधिक स्नेह उमड़ गया उनको विपत्ति में देखकर, तो प्रारब्ध के द्वारा ये सब दृश्य हुआ, इसको देख करके श्री कृष्ण विस्मित हो गए। विस्मित का अर्थ है आश्चर्यचकित हो जाना, ओहो काल कितना बलवान है, प्रारब्ध कितना बलवान है, मैं सोचता रहा कि इनकी रक्षा करूं ये हमारे हाथ से निकल गए। यह लौकिक लीला मात्र है, वास्तव में भगवान के हाथ से वो बाहर नहीं है, भगवान सर्वसमर्थ है, कहीं भी रक्षा करेंगे, लेकिन थोड़े काल के लिए वे विस्मित हो गए। मुख कमल पर सदा मुस्कान रहती है कृष्ण के, लेकिन स्मित रहता है, लेकिन उस समय अपने साथियों को मृत्यु के मुख में देख करके भगवान का स्मित चला गया, विस्मित। जो सदा खुश रहते हैं, हंसते हैं, अपने मित्रों के इस विपत्ति को देख करके भगवान की मुस्कान चली गई, शोक में पड़ गए, सोच में पड़ गए, सोचने लगे क्या करें। लेकिन तुरंत ही उन्होंने विचार किया, इत्थम किमत्रास्य खलास्य जीवनम नवा अमीशां च सतां विहिंसनम। भगवान विचार करने लगे हैं कि क्या किया जाए कि अस्य खलस्य जीवनम न, इस खल का जीवन न रहे, यह भी मर जाए और सताम हमारे भक्तों का, हमारे मित्रों का विहिंसनम न, क्या करूं कि यह खल मर जाए और हमारे मित्र न मरे, शोक में पड़ गए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, अपने मित्रों की रक्षा के बारे में सोचने लगे और इस खल के मरण के विषय में सोचने लगे, यह मर जाए हमारे साथी जीवित रहे, द्वयम कथम स्यात, ये दोनों कैसे होगा, इतिशम विचिंत, ये सोच करके खूब अच्छा से विचार करके और जान करके कि हाँ इस तरह से दोनों का हित होगा, सब कुछ देखने वाले अशेष दृग जो सब कुछ देखते हैं, कैसे अघासुर मरेगा और कैसे हमारे मित्र नहीं मरेंगे और या अन्य समस्त सज्जनों का, भक्तों का हित होगा, ये तुरंत विचार करके और उसके तुंड में, उसके मुख में प्रवेश कर गए, स्वयं भी प्रवेश कर गए। ये भगवान के एक रक्षण का उपाय यहां दिखाया जा रहा है। यदि वे मारते अजगर को, मान लीजिए कोई पत्थर उठा करके मारते या चाहे सुदर्शन चक्र का स्मरण करके मारते, तो मारने पर इतना जब मारना चालू करते तो सबको मार देता है, अपने शरीर के भीतर ही ऐठ करके और सबको तोड़ ताड़ कर पचा देता है। इसलिए भगवान चिंता में पड़े कि अब हम क्या करें, इसको मारना भी है लेकिन अपने मित्रों को बचाना है। यह विचार करके दोनों कार्य इस तरह से होगा, ये सोच करके उसके मुख में समा गए। देखिए इस संसार में कोई ऐसा है कि अजगर से ग्रस्त व्यक्ति को पेट से निकालने के लिए स्वयं भी अजगर के मुंह में चला जाए, यह तो केवल भगवान ही कर सकते हैं। क्या कोई उपाय नहीं था कि वे इसका वध कर दें और उनको निकाल दें, अनेक उपाय थे, भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन ये भगवान के लिए कहा गया घृणार्दित, वे स्नेह से पीड़ित हो गए, स्नेह से पीड़ित व्यक्ति को विचार नहीं होता है, वो अपने साथियों से भेंट करने, उनको पकड़ने के लिए अब यह भी विचार नहीं किए कि वे बहुत खतरनाक जगह पर जा रहे हैं, है ना, जहां प्रेम होता है, जहां स्नेह होता है, तो वहां व्यक्ति उसके पास जाता ही है। जैसे बच्चा कोई संकट में पड़ गया हो तो माँ उसे बचाने के लिए कभी कभी स्वयं भी संकट में संकट झेलती है, विचार नहीं करती है कि हाँ हम पर भी खतरा हो जाएगा, वो बच्चे के पास जाएगी। तो भगवान अपने भक्तों के पीछे गए, वे जहां गए हैं वहीं जाएंगे और उपाय करेंगे, तो वे गए उसके मुख में समा गए। तदा घनच्छदा देवा भयाद हाहेति चक्रसु, तो देवता जो इस लीला को देख रहे थे बादलों के ओट में, जब ही भगवान प्रवेश किया अघासुर के मुख में, तेवी वे हा हा लगे बोलने, अपना शोक प्रकट करने लगे, हाहाकार करने लगे, और कौन सादि कौन पह राक्षस जो अघासुर के संबंधित थे, वे सब बहुत प्रसन्न हुए। जब देवता उधर हाहाकार किए तो इधर कौन सादि बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, देवताओं का हाहाकार सुन करके वे प्रसन्न हो गए कि अवश्य अघासुर अपना काम किया है। वे सब लोग एक रिमोट कंट्रोल जैसा ही फिट किए थे अघासुर को, तो वे सब हर्षित हुए। विपक्ष तो कम सा है, देवता हाहाकार करने लगे। देवता भगवान के भक्त हैं, भगवान को इस विपत्ति में देख करके वे हाहाकार करने लगे, और कंस आदि राक्षस सब जय जयकार करने लगे, बहुत हर्षित हुए। उसी समय हुआ क्या, तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण तव्यय सार्ववत्सकम् चूर्णी चिकीर्षोरात्मानम् तत्तरसा बब्रधे गले। जब कृष्ण उसके मुख में आ गए तब बकासुर बिल्कुल तैयार हो गया, अब सबको चूर्ण करने के फेर में था और चूर्ण करना चाहता था। चूर्णी चिकीर्षो, चूर्ण करना चाहता था, मुंह को बंद करके और शरीर को फिर मोड़ना, जैसे तैसे करना वो चाह रहा था। तब तक तो श्री कृष्ण उसके गले में, गले के पास आकर के और वेग से बढ़ना चालू किए, जैसे त्रिविक्रम अवतार में भगवान वामन देव बढ़े थे, छोटा शरीर लेकिन एकाएक तीनों लोक में फैल गया, वैसे ही भगवान का शरीर चारों तरफ बढ़ने लगा और बढ़ करके उसके गले को पूरा एयर टाइट कर लिया, और वैसे गले में हो गया जैसे लगा कि कोई लोहे का, उतना विशाल मुख में कोई विशाल लोहे का खंभा गड़ गया हो गर्दन उसको। अब वो उगलना चाहता था, निगलना चाहता था, लेकिन हटा नहीं सकता था, सांस लेना भी कठिन हो गया उसके लिए, अघासुर के लिए। यह है भगवान की शक्ति, और कोई दूसरा उपाय नहीं किए, कोई मारपीट नहीं किए, बढ़ गए, बब्रधे गले में बढ़ गए, तरसा बहुत शीघ्रता से, जल्दी 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 बढ़ करके बड़े हो गए। कहीं भी गले में जगह नहीं रह गई कि कोई हवा आए या निकले, सांस लेने का सांस छोड़ने का जगह कुछ भी नहीं रहा। अब तो वो छटपटाने लगा, सर्प किस तरह से छटपटाता है आप लोगों ने देखा, इधर उधर शरीर पीटना, ये करना वो करना, सबसे पहले उसकी आंखें निकल गई, उद्गीर्ण दृष्टि ततो तिकायश्च निरुद्ध मार्गिण युद्गीर्ण दृष्टि भ्रमतस्तित। उसकी निरुद्ध मार्गिण, उसके मार्ग निरुद्ध हो गए, सांस लेने के जो मार्ग है, वास्तव में सांस लेना या इंद्रियों का जो भी मार्ग है गले से ही सबका संबंध है, तो मार्ग बंद हो गया, गला बंद हो गया तो श्वास प्रश्वास भी बंद हो गया। उद्गीर्ण दृष्टि, उसकी दृष्टि उलट गई, आखिर भ्रमतस तू इतस्तप, इधर उधर भ्रमत मतलब छटपटाने लगा, शरीर मरने लगा, तोड़ने लगा। पूर्णंतरंगे पौनो निरुद्ध, अंतरंगे उसके शरीर के भीतर पूरा पवन रुक गया, अवरुद्ध हो गया, तो वह पवन उसके ब्रह्म रंध्र को फोड़ करके निकला। भगवान उसके गले में थे, उसके ब्रह्म रंध्र को फोड़ करके पवन निकला, निर्भिद्य विनिर्गतो बही, प्राण वायु उसके मूर्धना से सिर से निकला। तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या सयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्जय। और जब पवन निकला ब्रह्मरंध्र से तो सारी इंद्रियां भी, सर्वेषु प्राणेषु इंद्रियेषु बहिर्गतेषु, इंद्रियां बाहर चली गई, बाहर चली गई इसका मतलब कि निश्चेष्ट हो गई। बहिर्गतेषु परेतां, तब इसके बाद भगवान अपने विरह से और अघासुर के जठरानल से झुलसे हुए मूर्छित वत्सान सुहृदा, बछड़ों को और अपने सुहृदों को, मित्रों को स्वया दृष्ट्या अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से उत्थाप्य जीवित किए। भगवान ने अघासुर के पेट में उनको देखे जाकर के, देख करके अपनी अमृत वर्षी दृष्टि से जीवित कर दिया। केवल स्नेह से देखना ही सबको जीवित कर दिया। स्वया दृष्ट्या असाधारणया दृष्ट्या, भगवान की दृष्टि असाधारण है। असाधारण का अर्थ होता है स्पेशल, वैसी दृष्टि और किसी की नहीं। स्नेह से देखे, भगवान के आंखों से अमृत बरसता है, तो उस अमृत वर्षी दृष्टि से देख करके जीवित कर दे, उत्थाप्य उठाए। तदन्वित और तय मिलित सन, और उन सबसे मिल करके उनके साथ या तद अनु उनके बाद उन सबको निकाले अघासुर के पेट से। भगवान हंस रहे होंगे, कहा चलिए निकलिए निकलिए, और कुछ भी नहीं हुआ था। जैसा वस्त्र था, यहां तक भोजन की सामग्री भी जो लिए थे, बच्चे या बेंत बांसुरी जो साथ में, सब कुछ जेव करते हैं सुरक्षित रहा। और भगवान निकाले उनको, चलो चलो निकलो निकलो निकलो। देख रहे थे पर्वत की शोभा ना। तो सबको निकाल करके इसके बाद निकले, तदन्वित अथवा सबके साथ निकले, सबको लिए लिए अघासुर के मुख से निकले। उसका प्राण तो ब्रह्मरंध्र से निकला, लेकिन भगवान उसके मुख से निकले बाहर आए। एक अद्भुत आश्चर्य हुआ। दूसरा आश्चर्य भी सुनो। परीक्षित महाराज से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पीना हि भोगो थितम अद्भुतम महत ज्योति सद्धामनो ज्वलयदिशो दश। उस स्थूल शरीर विशाल अजगर देह से एक अद्भुत ज्योति निकली। सब लोगों ने देखा कि ज्योति कहां से निकल रही है, सारे देवता देख रहे हैं। उस मरे हुए अजगर के शरीर से एक ज्योति निकली, जो मर रहा था उस समय जीव निकला। अद्भुत प्रकाश, वैसा सूर्य में प्रकाश नहीं है, बिजली में ऐसा प्रकाश नहीं, निकली ज्योति। ज्योति निकल करके खेव अस्थितम आकाश में टिक गई। कुछ देर प्रतीक्षा की, ज्योति स्वधामनो और ज्वलत दिशो दशो, अपने तेज से उस ज्योति ने सारे दिशाओं को, दसों दिशाओं को जगमग किया। और कुछ देर प्रतीक्षा किया, खेव अस्थितम इस निर्गमम, वो ज्योति प्रतीक्षा कर रही थी, वो प्रकाश प्रतीक्षा कर रहा था कि ये कब इस निर्गमम परम ईश्वर श्री कृष्ण कब निकलेंगे। और जैव ही वे निकले, विवेश तस्मिन मिश्रताम देवाओकसान, देवताओं के देखते देखते, एक प्रकार से देवताओं का अनादर सा करते हुए, वह महाप्रकाश भगवान के चरण कमल में समा गया। यह एक प्रकार से देवताओं का तिरस्कार था, अनादर था। अनादर का मतलब यह हुआ कि अघासुर को भगवान ने वह गति दी जो किसी देवता को ही प्राप्त नहीं है, अपना नित्य पार्षद बना लिया। चाहे अघासुर की मनोवृत्ति कुछ भी हो, मेंटलिटी कुछ भी हो, लेकिन उस संपर्क में भगवान के आया ना, भगवान को खा गया, बछड़ों को खा गया भीतर, लेकिन भगवान उसके पेट में जाकर के उसको सदगति दे रहे। उसका चाहे जो स्वभाव हो, कृष्ण का अपना स्वभाव है ना, वो अच्युत है। अपने कृपालु स्वभाव से भगवान च्युत नहीं होते। उन्होंने विचार ही नहीं किया कि अघासुर इतना दुष्ट था, खल था, इतने लोगों की हत्या किया, कंस का साथी है, ये है। भगवान अपना ज्यादा स्मरण रखते हैं, मैं कौन हूं, दूसरा कौन है, इस पर ज्यादा विचार नहीं करते, मैं कौन हूं। तो अपने स्वभाव से वे कृपा किए, अघासुर भगवान का नित्य पार्षद हो गया। और इसी तरह से ठीक पुतना भी भगवान की धाय बन गई नित्य लीला में, और बकासुर भी। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह अद्भुत दयामय स्वभाव है, सहज चिन्मय है और सबका उपकार करते रहते हैं। तो वह जीवाख्य ज्योति भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई। उस समय सारी देवता बहुत हृष्ट हुए, देवता लोग फूलों की वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व आदि गाने लगे, विद्याधर बाजे बजाने लगे और नारद वशिष्ठ आदि ब्राह्मण स्तुति करने लगे और भगवान के पार्षद श्री गरुण जी इत्यादि ये लोग जय जय बोलने लगे भगवान कृष्ण। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, बाजा स्तुति गीत नाच सब होने लगा, बहुत विशाल उत्सव हुआ और इतनी आवाज निकली, इतनी आवाज हुई नाचने की गाने की कि वह आवाज ब्रह्मा जी के लोक तक गई। ब्रह्मा जी अपने लोक में सुने इस ध्वनि को तो वे तुरंत ही आ गए वृंदावन में। अच्छा, ये नहीं लिखा गया कि ब्रह्मा जी उस समय कहां थे, हो सकता है वृंदावन में ही आए होंगे निकट में, और देवताओं के द्वारा इस तरह गान बजान अनेक उत्सव हो रहा था तो वे सुने, सुनकर के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अघासुर की मुक्ति को देख करके श्री ब्रह्मा जी को हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। एक टीकाकार है, अपनी टीका में कहते हैं कि ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, हमने इसके पापों का लेखा जोखा किया, इतने रजिस्टर भरे गए लिख करके, इसको इस नरक में डालना है, यहां डालना है और उसको इन्होंने मुक्त कर दिया, हमसे इतना परिश्रम क्यों करवाए। इसी क्रोध में ब्रह्मा जी बछड़ा और बालकों को चुराए, देखते हैं क्या करते हैं। वो कहते हैं लेकिन वास्तव में यह विनोद की बात है, ऐसा नहीं हुआ। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए अघासुर की मुक्ति देखकर। आगे सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत बोल रहे हैं, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अघासुर भगवान का पार्षद बन गया, मुक्त हो गया। अरे भगवान के अंग की शरीर की प्रतिमा भी कोई बनावे, फोटो बनावे और उस प्रतिमा में से भी किसी एक अंग का, हाथ का, चरण का, सिर का, कोई एक बार भी मन में ध्यान भी करे प्रतिमा का ध्यान, तो मनोमय मूर्ति भागवती गति दे देती है। मनोमय मूर्ति, मन में सोचा हुआ भगवान का रूप भागवती गति, पार्षद गति दे देता है। तो फिर वही साक्षात ईश्वर जिसके शरीर के भीतर ही चले गए डायरेक्ट नख से सिख तक, उसके गति में क्या संदेह हो सकता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात। भगवान का मन में केवल चिंतन किया जाए तो व्यक्ति भगवान का पार्षद बनता है, से मुक्ति मिलती। और अभी किसका, भगवान के प्रतिमा का ध्यान, भगवान के श्री विग्रह का, मूर्ति का ध्यान, और फिर कोई मूर्ति को आंख से देखे, नमस्कार करे, तब तो कहना ही क्या है। और फिर उसको क्या कहना जिसके भीतर, जिसके पेट में स्वयं भगवान ही समा गए, क्या कोई ध्यान करेगा ऐसे। बड़े बड़े जोगी जब भी ध्यान करेंगे तो भगवान का मनोमय कल्पना करके कि भगवान ऐसे है वैसे, लेकिन अघासुर तो ऐसा ध्यान किया, मनोमय क्या, शरीर के भीतर ही भगवान चले गए सीधा, इसीलिए वो पार्षद शरीर प्राप्त किया। तो मैं तब विचित्रम मनुजार भमाइना, यह भगवान के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अघासुर को मुक्ति देना। तो कल हम लोग सवेरे के सत्र में इसी तथ्य पर विचार करेंगे, आचार्यों के लिखे हुए बातों का आस्वादन करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।